हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। रवि को सामने देखकर सुनैना ने अपना सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाला। रवि, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे और कहाँ बात करने में बिजी थे इतनी देर से? तुम्हारे सर का कॉल क्यों नहीं लग रहा था? कहाँ पर है आदित्य, बताओ मुझे। मैडम, मैं एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट से कॉल पर बात कर रहा था, शायद इसी वजह से। वैसे आप मुझे फ़ोन क्यों कर रही थी? रवि ने उससे नजरें चुराते हुए पूछा। रवि को इस तरह अनजान बनने का नाटक करते हुए देखकर सुनैना को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आया। पहले ही वो आदित्य से बात न हो पाने की वजह से परेशान थी और ऊपर से ये रहस्यमयी बातें और अब रवि का ये बर्ताव, सब कुछ मिलकर सुनैना का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो चुका था। रवि, ज्यादा नाटक मत करो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम आदित्य के साथ ही यहाँ पर आए हो। सीधी तरह से बताओ मुझे, उसे क्या हुआ है और वो यहाँ पर क्यों है? मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना, सुनैना गुस्से में उसे उंगली दिखाते हुए बोली। सुनैना का लहजा एकदम धमकी देने वाला था। उसकी उन जलती हुई आंखों को देखकर रवि का तो गला ही सूख गया। थूक निगलकर गला तर करते हुए उसने कहा, मैडम, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने उन्हें अर्जेंटली चेकअप के लिए बुलाया था। वह तो यहाँ पर आ भी नहीं रहे थे, मैं ही उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ पर ले आया। आई नो इट, मुझे इस बारे में पहले से ही शक था कि आदित्य को ज़रूर कुछ हुआ है और उसका ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। इसके अलावा मैंने उसे कई बार यहाँ हॉस्पिटल में भी देखा। रवि की बात सुनकर पीछे खड़ा अनय एकदम से बोल पड़ा। सुनैना और रवि दोनों का ध्यान उसकी ओर गया। और तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तुम आदित्य पर नज़र रखे हुए थे क्या? सुनैना ने अनय से पूछा। नहीं नहीं, उस तरह से नज़र नहीं, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से, मेरा मतलब है जब से मैं यहाँ वापस आया हूँ, तब से ही मैं उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने तो खुद से मिलने के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, इसलिए मेरी उससे बात भी नहीं हो पाती, अनय ने सफाई देते हुए कहा। सुनैना को उसकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा विश्वास तो हुआ। लेकिन इस वक्त उसकी प्राथमिकता पूरी तरह से आदित्य को ढूंढना थी, इसलिए उसने बाकी बातों में टाइम वेस्ट नहीं किया और रवि की तरफ देखकर उसे लगभग आदेश देते हुए बोली, रवि, मुझे पूरी बात बताओ, कौन से डॉक्टर और क्या हुआ है आदि को, और सबसे बड़ी बात, कहाँ पर है वो? मुझे बस अभी अभी उससे मिलना है। ठीक है, आप दोनों मेरे साथ आइए, लेकिन अगर सर ने इसके लिए मुझे डांटा तो फिर डोंट वरी, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, और अगर कुछ कहेगा भी तो मैं संभाल लूंगी, सुनैना ने उसकी बात पर कहा। फिर वे तीनों एक साथ डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ गए। सुनैना ने दरवाजे के बाहर डॉक्टर का नाम देखा, मुखर्जी, लेकिन वो किस चीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं ये सुनैना समझ नहीं पाई, इसलिए उसे ये भी पता नहीं चला कि आदित्य को क्या हुआ है और वो किस लिए यहाँ डॉक्टर के पास आया होगा। तभी सुनैना को याद आया कि रवि ने अभी अभी उससे कहा था कि उसने ज़बरदस्ती आदित्य को डॉक्टर के पास ले आया क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और आदि तो खुद से तो कभी भी यहाँ, कम से कम अपने इलाज के लिए, नहीं आता। इतना सोचते हुए सुनैना केबिन के अंदर आई और उसने सामने डॉक्टर को बैठा हुआ देखा, लेकिन उसे वहाँ आदित्य कहीं भी नज़र नहीं आया। अनय और रवि भी सुनैना के पीछे ही वहाँ आए, लेकिन सुनैना की नज़रें अभी भी आदित्य को ही ढूंढ रही थीं। उन तीनों को इस तरह एक साथ केबिन के अंदर आते हुए देखकर डॉक्टर थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए बोला, अरे अरे, आप लोग कौन हैं और इस तरह से अंदर कैसे आ गए? क्या आप लोगों के पास? सॉरी डॉक्टर, लेकिन मैं यहाँ आदित्य, मेरा मतलब है आपके एक पेशेंट मिस्टर आदित्य सिंघानिया, उन्हें ढूंढने, मेरा मतलब है उनके साथ यहाँ आई हूँ। सुनैना बहुत ही अजीब ढंग से जल्दी जल्दी बात बदलते हुए बोली। डॉक्टर उसकी तरफ कन्फ्यूजन से देखने लगे। डॉक्टर को समझ नहीं आया कि सुनैना क्या कहना चाह रही है। तभी रवि सुनैना के पीछे से निकलकर आया और डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, अरे डॉक्टर, मैं अभी आया था ना आदि सर के साथ, और आप तो उन्हें जानते हैं ना, ये उनकी वाइफ हैं। रवि की बात सुनकर डॉक्टर सुनैना की तरफ देखकर उसे लगभग डांटते हुए बोला, अच्छा तो आप उनकी वाइफ हैं मिसेस सिंघानिया, लेकिन आप इतनी लापरवाह कैसे हैं? आप अपने हस्बैंड का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती और उन्हें टाइम पर ट्रीटमेंट के लिए लेकर भी नहीं आती, और अभी भी उन्होंने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। आई एम सॉरी डॉक्टर, बट हमारी शादी को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6-7 महीने ही हुए हैं। इसके अलावा आदित्य बहुत ही ज्यादा रिजर्व टाइप का है और वो मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताता, बट प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए उसे क्या हुआ है जिससे कि आगे से मैं उसका अच्छे से ध्यान रख पाऊँ, सुनैना डॉक्टर के सामने रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोली। अनय अभी भी पीछे खड़ा था। सुनैना को लगा कि आदित्य की मेडिकल हिस्ट्री जानने का ये उसके लिए अच्छा मौका है, इसलिए वो डॉक्टर से बात करने के लिए बैठ गई, क्योंकि उसे पता था कि आदित्य मिल भी जाएगा फिर भी इतनी आसानी से अपने बारे में सब कुछ नहीं बताने वाला। सुनैना को डॉक्टर से बात करते देख अनय ने उनके बीच में कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से बाहर चला गया। उसका पूरा ध्यान इस वक्त आदित्य को ढूंढने पर था, क्योंकि जितना वो आदित्य को जानता था उसे समझ आ रहा था कि आदित्य जरूर कोई न कोई बेवकूफी करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ रवि का ध्यान भी आदित्य पर लगा हुआ था, इसलिए उसने सुनैना को एक्सक्यूज करके अनय के पीछे ही वहां से बाहर निकल आया। सुनैना ने भी उन दोनों को जाते हुए नोटिस किया, लेकिन उसने उन दोनों में से किसी को नहीं रोका और डॉक्टर से आदित्य के बारे में पूछने लगी। डॉक्टर ने एकदम सीरियस होकर सुनैना की बात का जवाब देते हुए कहा, मिसेस सिंघानिया, आपके हस्बैंड को बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें डिप्रेशन, सोशल एंग्जाइटी और अगोराफोबिया सबसे ज्यादा मेन है, लेकिन इसके अलावा अब उनकी फिजिकल हेल्थ भी ठीक नहीं है और उन्हें हेपेटाइटिस बी भी है। डॉक्टर की ये बातें और बीमारियों के अजीबोगरीब नाम सुनकर सुनैना कन्फ्यूजन से डॉक्टर का मुंह देख रही थी, क्योंकि उसे ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना समझ रही थी कि आदित्य को जरूर कोई सीरियस प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर, क्या उनकी बीमारी अभी बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ी है और उसका इलाज पॉसिबल है ना? सुनैना ने जल्दी से सवाल किया। डॉक्टर उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, जैसा कि आपको और हम सबको पता है कि मेडिकल साइंस में आजकल इतनी ज्यादा तरक्की हो गई है कि बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए जो सच में इलाज करवाकर ठीक होना चाहता है, मिस्टर आदित्य जैसे लोगों के लिए नहीं जो खुद ही अपनी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। खुद ही अपनी जान के दुश्मन, क्या मतलब है आपका इस बात से? सुनैना ने फिर से कन्फ्यूज होकर उनकी तरफ देखते हुए पूछा। सुनैना से इस तरह से बीच बीच में सवाल करने पर डॉक्टर थोड़ा इरिटेट होते हुए बोला, मैडम, आप सच में आदित्य सिंघानिया सर की वाइफ हैं भी या नहीं? आपको तो उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। आपको पता है उनकी इस बीमारी का डर तो कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा तो उन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं और वो अपनी किसी भी बीमारी का ठीक से ट्रीटमेंट भी नहीं करवाते हैं। डॉक्टर की ये बातें सुनकर सुनैना को मन ही मन बहुत ज्यादा गिल्ट हुआ। उसे सब कुछ याद आया कि किस तरह आदित्य उससे दूर भागता रहता था और बीच में उसकी तबीयत भी खराब हुई थी, और सुनैना ने जब भी डॉक्टर के पास आने को कहा तो वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था।
ये सब कुछ सोचते सुनते सुनैना इमोशनल हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सोचकर कि आदित्य इतने दिनों से अकेले सब कुछ अपने अंदर रखते हुए कितना कुछ झेल रहा था, सुनैना ने कई बार उसका दर्द बांटने और उसके मन में झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन आदित्य उसे सिर्फ उतना ही दिखाता था जितने में सुनैना को कोई तकलीफ न पहुंचे। आदित्य सच में उससे बेपनाह प्यार करता था और हमेशा ही अपने से पहले सुनैना के बारे में सोचता था, लेकिन सुनैना उसके प्यार का क्या? उसे तो अपना प्यार निभाने, दिखाने और जताने का कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा था। सुनैना ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, उसकी मेंटल हेल्थ में अब कुछ सुधार है या फिर नहीं? बाकी बीमारी के लिए आप मुझे मेडिसिन और जो भी प्रिकॉशन हो लिखकर बता दीजिए, मैं पूरा ध्यान रखूंगी अब से। उसकी मेंटल हेल्थ पहले बहुत ज्यादा खराब थी, लगभग पिछले साल, लेकिन अभी 7-8 महीनों से उसकी मेंटल हेल्थ में काफी सुधार देखने को मिला है और अब वो पहले से अच्छा बर्ताव करता है, लेकिन ज्यादा लोगों से मिलना जुलना अभी भी पसंद नहीं करता। देखो, यहाँ जब तक मैं अकेला था तब तक वो यहीं बैठा था और जैसे ही उसे किसी और के आने की आहट लगी वो यहाँ से चला गया। डॉक्टर ने आदित्य के बारे में पूरी बात सुनैना को बताई। डॉक्टर की ये सारी बातें सुनकर सुनैना को भी इस बारे में याद आया कि वो यहाँ आदित्य से मिलकर उसे ढूंढने और बात करने के लिए आई थी। पिछले 7-8 महीनों पहले ही तो हमारी शादी हुई है, इसका मतलब मेरे साथ होने की वजह से उसकी मेंटल हालत में सुधार आया है डॉक्टर, लेकिन अभी वो कहाँ चला गया? मैंने कल से उसे नहीं देखा है और मुझे उसकी चिंता हो रही है डॉक्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं? सुनैना थोड़ा सा खुश होते हुए डॉक्टर को पूरी बात बताई और उनसे फिर आदित्य के बारे में पूछने लगी। मुझे नहीं पता, आपके हस्बैंड का पता आपको होना चाहिए, मैं डॉक्टर हूँ, कोई उनका पर्सनल असिस्टेंट नहीं, डॉक्टर ने एकदम साफ जवाब दिया। सुनैना एकदम चुप हो गई और दवाइयों के पर्चे और आदित्य की सारी रिपोर्ट्स अपने बैग में रखते हुए केबिन से बाहर निकल आई। असिस्टेंट वाली बात याद करते ही उसे रवि की याद आई और वो डॉक्टर के केबिन से बाहर आकर इधर उधर नजर घुमाकर रवि को ढूंढने लगी। लेकिन जब उसे रवि कहीं नजर नहीं आया तो उसने तुरंत रवि को फोन लगाया। दूसरी तरफ से कुछ बजने के बाद कॉल रिसीव हुआ, लेकिन दूसरी तरफ से बोला गया, हेलो मैडम, मैं यहाँ पार्किंग एरिया में हूँ, आदित्य सर की कार भी नहीं है, इसका मतलब वो यहाँ से निकल गए। आदित्य सुनैना से बिना मिले ही वहाँ से कहीं और चला गया। ये बात सुनकर सुनैना को बहुत बुरा लगा और उसे आदित्य पर गुस्सा भी आया। सुनैना ने अपने मन में कहा, ये कौन सा चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हो तुम आदित्य, और आखिर क्या मजा आ रहा है तुम्हें ये सब करके। क्रमशः